जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र सत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की समवेत भक्त वृंद की निदाय गौर हरि प्रेमानंदे हरि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ नवम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक क्रमांक 18 से लेकर के 21 तक आपके बोर्ड में श्लोक संख्या 21 लिखा है तो उसी को आवृत्ति करेंगे। अंशुमानोवाच न पश्यति त्वं परमात्मनो जनो न बुध्यते द्यापि समाधियुक्तिभिः कुतो परे तस्य मनः शरीरधि विसर्गसृष्टा वयम् प्रकाशः अंशुमानोवाच न पश्यति त्वं परमात्मनो जनो ते द्यापि समाधियुक्तिभिः कुतो परे तस्य मनः शरीरधि विसर्गसृष्टा वयम् प्रकाशः अंशुमानुवाच पश्यति त्वं परमात्मनो जना न बुध्यते द्यापि समाधियुक्तिभिः कुतो परे तस्य मनः शरीरधि सृष्टा वयम् प्रकाशः
आहो जय
अनुसुमान ने कहा, नपस्यति नहीं देख सकता त्वाम आपको, परमात्मना हे दिव्य जीव, अजन अजन ब्रह्मा, न बुध्यते नहीं जान सकते हैं, अद्यपि आज भी समाधि समाधि से युक्ति भी युक्ति आदि चिंतन से, कुतुह परे कैसे दूसरा तस्य मना, इसका मना शरीर अधि, जिनका शरीर या मन को स्वयं आत्मा मानते हैं, विसर्ग सृष्टः ये संसारिक प्राणी, वयम प्रकाशः हम जो दिव्य ज्ञान से रहित हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुसुमान ने कहा, हे भगवान, आज तक भी ब्रह्मा जी आपके अगम्य पद को ध्यान या चिंतन द्वारा समझ पाने में असमर्थ है, तो हम जैसे कि कौन कहे जो ब्रह्मा द्वारा देवता पशु मनुष्य पक्षी तथा जानवर इत्यादि के विविध रूप में उत्पन्न किए गए हैं, हम पूरी तरह अज्ञान में हैं, अतएव हम साक्षात ब्रह्म स्वरूप आपको कैसे जान सकते हैं। तात्पर्य, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्ग जानती परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु के विजेता, सारे जीव मोह में उत्पन्न होते हैं, वे इच्छा तथा घृणा के द्वेष से पराजित होते हैं। इस जगत के सारे जीव प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी सतगुणी है। इसी प्रकार देवता प्राय रजगुणी है तथा देवताओं के से नीचे जीव तथा मनुष्य पशु आदि तमोगुणी या सतरज और तमोगुण के मिश्रण होते हैं। अतएव अंशमान बताते हैं कि उनके सारे चाचा जो भस्म हो गए थे प्रकृति के गुणों के अधीन होने के कारण, कपिल देव मुनि कुछ समझ नहीं पाए। उसने प्रार्थना की, क्योंकि आप ब्रह्मा जी के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष बुद्धि से भी परे हैं, अतएव जब तक आप हमें ज्ञान ना दें हम आपको समझने में असमर्थ हैं। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयम् प्रसाद लेसान गृहीत एव ही जनाति तत्त्वं भगवन महिम्नो नचान्य एकोपि चिरं विचिन्वन्। हे प्रभु, जिस पर आपके चरण कमलों की किंचित मात्र भी कृपा हो जाती है वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं वे चाहे वेदों का वर्षों तक अध्ययन क्यों न करें आपको समझ नहीं पाते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भगवान को वही समझ सकता है जिस पर उनकी कृपा हो, अन्य लोग उन्हें नहीं समझ सकते। ओम अज्ञानंतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपम सग्रजातम सहजनम रघुनाथम नितम तम सजीव साद्वैतम सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखा नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब कथा प्रसंग से खूब परिचित होंगे, तो फिर भी श्लोक संख्या 18 से हम सूचना देते हैं। श्लोक संख्या 18 में बताया गया है, अयोध्या वासिन सर्वे बालकान पुत्रन रागतान दृष्ट्वा विसिस्मिरे राजन राजा चापि नतप्यतः। हे राजा परीक्षित, जब सारे अयोध्या वासियों ने देखा कि उनके लड़के पुनः जीवित हो उठे हैं तो वे चकित रह गए और राजा सगर को भी अपनी पुत्र की अनुपस्थिति पर अत्यधिक पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात महाराज सागर ने अपने पुत्र अंशुमान को घोड़ा ढूंढ लाने का आदेश दिया। अंशुमान, आपने चाचाओं के पद से होकर धीरे धीरे राख के ढेर तक पहुंचा और उसने उसी के निकट घोड़े को पाया। श्लोक संख्या 20। महान अंशुमान ने विष्णु अवतार कपिल नामक मुनि को देखा जो घोड़े के निकट आसीन थे। अंशुमान ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया और दत्तचित्त होकर प्रार्थना की श्लोक आज आपने आवृत्ति किए। तो प्रसंग इस प्रकार है, श्री अयोध्या नरेश सगर महाराज के दो पत्नी थे। आप सब पढ़े होंगे इस प्रसंग को। तो एक पत्नी का तो बेटे थे असमंजस और एक पत्नी का बहुसंख्यक पुत्र 60,000 लड़के थे और एक का एक थे, बताओ। अब वो जो एक थे असमंजस, वो नाम भी ऐसा ही था, वो महाराज सागर का भी नाम है, 20 के साथ पैदा हुआ था सागर। तो वो क्या करते थे असमंजस, वो तो पहले जन्म में बहुत बड़े जोगी थे, सिद्ध जोगी थे, तो जाति स्मर थे, उनको याद था सारे जोगी सब मंत्र तंत्र याद था। तो उन्हें खेलते कूदते बच्चों को पकड़ करके सरजू नदी में फेंक देते थे। अरे खेलने गए, कोई बच्चा को पानी में फेंक दिए, मर गया, डूब गया, दो चार बच्चों को डली मारते थे। अब कंप्लेन आता था, परेशान हो गए, बोले क्या राजकुमार है, अब क्या कहें, उठा के पानी में फेंक दिया, बच्चे गए। तो अयोध्यावासी जनता बहुत दुखी हो गए, बोले मार रहा डेली। कई लड़के को हर हो, राजा के पास, राजा भी परेशान हो गए, बोले मैं क्या करूँ बेटे के लिए। अंत तक गुस्से होकर उन देश से निकाल दिया, गुस्सा होकर के अयोध्या से निर्वासित कर दिया। जब निर्वासित कर रहा था तो असमंजस ने, वो एक्चुअली उनका ये चाल था, तो उन्होंने आपने योग शक्ति बल से जितने लड़के को पानी में डुबा के मार दिया था सबको जीवित कर दिया, वापस ले आया सबको ला कर अपने अपने घर में भेजा, बोले जाओ अपने अपनी मम्मी पापा के पास। वो सब आश्चर्य विस्मितान अयोध्यावास, बोले रे तभी से मरा था फिर आ गए। ऐसे अद्भुत कर्म को देखे तो राजा सगर ने भी बड़े दुखी हुआ, बोले अरे यार इतने अच्छा लड़का मेरा, मैं उनको निर्वासित कर दिया, वो तो चले गए थे, वो आना नहीं चाहे, उनको बुलाया, बोले ना आप मैं नहीं जाऊँगा, वो तो जोगी थे अपना योग साधना के लिए चले गए। तो उन्हीं का एक बेटा था असमंजस का, जिनका नाम है अंशुमान, एक लड़का वो जोगी राज असमंजस का, जो पहले जन्म से जोगी थे, योग सिद्ध पुरुष, उनके पुत्र थे अंशुमान। और जो सगर महाराज का प्रथम पत्नी का जो पुत्र थे 60,000, तो उन्होंने यज्ञ किए, सगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ, और यज्ञ में इंद्र को तो होता ही परेशान, वो बोला पता नहीं मेरा पुष्प पुष्प के ऊपर आँच ना आ जाए तो आ करके चोरी किया, घोड़ा चोरी करके ले गया था, ले गया था तो अब घोड़ा ही नहीं कैसे पूर्ण होती होगा। तो उसने भेजे अपने, बोले ये क्या इतने सारे संख्या में पुत्र हैं, सभी को आदेश दिए, बोले पुत्रों पूरा 60,000 को बोले आप जाओ घोड़े ढूंढो। वो सागर पुत्र घोड़े ढूंढते ढूंढते खोद डाले धरती को, बोलते उन्हीं के नाम से सागर तो पड़ा, सागर और खोद डाले गड्ढा उसके लिए हो गया। ढूंढ ढांड करके अंततः एक जगह में जहाँ पर भगवान कपिल बैठ कर तप कर रहे थे वहाँ घोड़ा को पाया। एक्चुअली कपिल भगवान तो बसा करते, इंद्र ने बदमाश डर के मारे घोड़ा को छोड़ कर चला गया था। तो घोड़ा को यहाँ देखे कपिल भगवान तो आँख मूंद कर बैठे थे, तो उनको बाबा जी एक आँख मूंद कर बैठा हुआ है, वो घोड़ा इधर है। बंधा देख करके उन्हें डाउट किए, बोले चोरी माल जहाँ बरामद होता है तो इसी को डाउट करेंगे, आजकल भी यही नियम है, बिल्कुल निर्दोष है, आपके घर में सामान निकला आपके अरेस्ट हो गया है ना। तो कपिल भगवान को सारे राजकुमारों ने बोले देखो ढोंगी बाबा है आँख बंद करके कर रहे, गाली देने को मारो पिटो करके उनको इसे गाली देने लगे, हवाला करने लगे, अपना हथियार उठाने लगे मारने के लिए उनको पकड़ करके, बोले ढोंगी है। तो भगवान अपने साधना में थे तो उन्होंने देखे हल्ला हुला क्यों हो रहा है तो आँख खोले, तो भगवान कपिल देव का दृष्टि उल्मित हुआ और वो 60,000 अपने आप में भस्म हो गए। कोई सोचता है कपिल देव जला देने, कपिल देव को पड़ी नहीं था उनको जलाना, क्या जरूरत था उनको, उनके मन में कोई क्रोध कोई द्वेष कुछ नहीं था, वो तो केवल देखे कि कौन डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन वो आपने ईर्षा आपने द्वेष के कारण जो हिट प्रकट हुआ वो हिट से मर गए। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इस श्लोक में लिखते हैं ये महत व्यतिक्रम, महत लोगों का महत पुरुषों का अपमान किया जाता अपमान किया जाता है ऐसे ही जल मर जाते हैं, तो जल के मरो या कैसे भी मरो मरते हैं इसी प्रकार की दशा होता है। तो इस महत व्यतिक्रम का तुरंत परिणाम हुआ सारे को सारे एकाध दो बच जाते, कोई नहीं बचे, अब घोड़े भी नहीं आया बच्चे भी नहीं आए। सागर महाराज बड़े चिंतित रहे तो अंततः उनके पुत्र उनके दूसरा बेटा का बेटा जो बेटा तो चला गया था उनका बेटा अंशुमान जो बचपन से बड़े उत्तम गुण के पुत्र थे, अपने नाना जी के काम सब करते दादाजी के सहायता करते थे, तो उनको बोले आप जाओ ढूंढो घोड़ा ढूंढ के लाओ। तो चाचा लोग भी कहाँ गए, खबर शायद मिल गया होगा उनको भी, तो उन्होंने अपने चाचाओं का रास्ता पकड़ करके गए अंशुमान ने, उनको ज़्यादा इधर नहीं तो रास्ता पता सूचना मिल चुका होगा, और जा करके पहुँचे 60,000 उनका जहाँ जले होंगे बहुत स्टॉक होगा स्तूप का राख बहुत बड़ा था, देखे समझ गए सारे अंकल लोग कहीं हैं। तो उस राख के ढेर के पास देखा कि बाबा जी बैठे हुए घोड़ा भी है जिस घोड़ा को ढूंढना था। तो देखिए इन दोनों में अंतर, ये 60,000 राजकुमार थे और राजकुमार के कुमार है, लेकिन केवल व्यवहार में अंतर। उन लोगों ने घोड़ा को देखते ही गाली देना शुरू किए, अपने बिल्कुल उद्यत होकर के मारो पीटो ये इस प्रकार से व्यवहार कर रहे थे साधु के साथ बिना जाने पहचाने, लेकिन उन्होंने देखा तो तुरंत हाथ जोड़ करके ये श्लोक कहते हैं। घोड़ा को देखा मन में कुछ नहीं हुआ, घोड़ा को लेने से पहले घोड़ा लेकर आ जाता कुछ कहते नहीं, घोड़ा को लेने से पहले सबसे पहले साधु को प्रणाम करते हैं, साधु को प्रणाम करते हैं, निश्चित रूप से उनको सूचना मिल गया होगा ये साधु के पंगे में आकर ये मर गए मेरे चाचे लोग सारे, मैं और दूसरा पंगा नहीं लूंगा। चाहे उनको सूचना प्राप्त हुआ ना हो लेकिन उनका ऐसे सुगुण था स्वभाव था, तो उन्होंने साधु को देख करके महत्पुरुष को देख करके उनके स्तुति करने लगे। इससे पता चलता है कि अनुष्मान जी को केवल वो साधु करके पता नहीं था, उनको क्या कर पता था, भगवान करके पता हो गया था। क्योंकि जो स्तुति उन्होंने शुरू किए उसमें बिल्कुल कहते हैं कि आप भगवान हैं, आपके बारे में हम भले कैसे जान सकते हैं। तो बड़े महत्वपूर्ण बात अंशुमान जी कहते हैं, अंशुमान वाच न पश्यति त्वं परमात्मनो जनो न बुध्यते अद्यपि समाधि युक्ति भी। हे परमात्मा, आपको तो देखना दूर बात है, जानना भी दुष्कर है, और हम तो क्या साक्षात सृष्टिकर्ता वेद गर्भ ब्रह्मा आज तक भी लगे हैं, जुटे हुए हैं, और कैसे समाधि युक्ति भी आपने बुद्धि और युक्ति और समाधि में बैठ करके योग साधना में समाधि युक्ति द्वारा आज तक भी भला जान पाए होंगे? बोले नहीं, अद्यपि न बुध्यते, नहीं जानते। कुतो परे, फिर बाकियों का क्या कहा जाए? उनको छोड़कर बाकी जो उन्हीं से ही बने हुए हैं, ब्रह्मा जी के प्रोडक्ट हम सब हैं। बोलते हैं जो खुद ही ब्रह्मा जी को नहीं अभी तक नहीं जान पाए, और ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट हम लोग जीव जितने हैं सब गुण से अपने आप परेशान है, क्या आपको समझेंगे? विसर्ग सृष्टा, विसर्ग सृष्टा मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट, वयम हम लोग कैसे जान पाएंगे? हमारे जानने के पास हमारे पास उपाय भी है क्या है? बोले मन शरीर धी, यही तो होता है ना, नहीं काय मन वाक्य, ये तीन ही तो माध्यम है। बोले ये तीन हमारे इतने कंटामिनेटेड है, उसके द्वारा कहाँ जाने? जो ब्रह्मा जी नहीं जान पाते हम क्या जाने, कैसे जान पाएंगे? तो इस उक्ति से हम लोग अंशुमान के मनोभाव को स्पष्ट समझ पाएंगे कि उन्होंने का अंदर कितनी दैन्यता था, और भगवान के प्रति भक्ति श्रद्धा और सम्मान कितने था उनके मन में, और अपना नम्रता किस प्रकार था, ये उनका प्रथम वचन से स्पष्ट उक्त होता है। और भगवान की वास्तविक स्थिति के ज्ञाता है, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, वो भगवान की वास्तविक स्थिति के ज्ञाता थे, तभी तो इस प्रकार श्लोक बोले न पश्यति, आपको नहीं जान सकते हैं। मतलब वो गीता कोर्स वगैरह किए होंगे जरूर, भगवान गीता में कहते हैं नम विदुहु सुरगणा प्रभवंती न महर्षय अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। भगवान स्वयं कहते मुझे कोई नहीं जान सकता, नम विदुहु देवता लोग भी नहीं जान सकते, सूर्यगण प्रभवंती न महर्षय मेरे प्रभाव को महर्षि लोग भी नहीं जान सकते, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी। देवताओं आपने सतोगुण के द्वारा, आपने साधन उपाय के द्वारा, ऋषि महर्षि लोग आपने योग साधना अपनी तप आदि द्वारा नहीं जान सकते मुझे। क्यों नहीं जान सकते? भगवान बोलते हैं कि मैं उनका बाप हूं, मुझे किसे जानेंगे, हम आदि रहे, मैं उनका आदि हूं, देवताओं के और ऋषि के अच्छा सर्वशः ऑल्सो जितने अभी तक हुए हैं वो होंगे सबका, सबका बाप में हो, बाप के बारे में बेटा कैसे जाने? बोले इसलिए नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। अगर भगवान ने स्वयं जनाने चाहे भी, अगर पिताजी ने बेटा को अपने बारे में आत्मकथा सुनाएगा तो सुना सकता है डिटेल पूरा बचपन से सारे, लेकिन वो ऐसे पिता हैं वो स्वयं नहीं बता सकते। अर्जुन ने पूछा मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, बोले मैं बताना तो चाहता हूँ लेकिन मैं भी बता नहीं सकता मेरे बारे में। बोले मेरे लिए भी संभव नहीं है ना, मैं मेरा बारे में पूर्णता से बता नहीं सकता हूँ। भगवान की उक्ति है भगवद्गीता में दसवां चैप्टर में, वो बोलते मैं नहीं बता सकता, ये संभव नहीं है, तो इसलिए आप जानना चाहते हो मैं थोड़े बहुत बता सकता हूँ, जितना संभव इतना बने, तो मैं भी नहीं पूरा बता सकता हूँ, अनंत है मेरा विभूति, अनंत है मेरा शक्ति, मैं ही नहीं बता सकता। तो बताने लगे बताने लगे अर्जुन तो क्या बताने लगे, बताने लगे 30-40 लोग बताने के बाद फिर भगवान बोले तंग हो गए, बोले अर्जुन मैं कितना देर बोलते जाऊंगा, तू कितना भी सुनते जाएगा, इतना ही समझ लो। अथवा बहुनाते न किंग ज्ञाते न तवार्जुन विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एक अंशे न स्थित हो जगत। अब इतने समझ लो ये संपूर्ण चराचर जगत एक टुकड़े पर टिका हुआ, मेरा मुझे क्या जानेगा तुमने, मेरा एकमात्र अंश में संपूर्ण जगत टिका हुआ है, इतने ही समझ लो बहुत है आपके लिए, तो मुझे क्या समझेगा। और अरे ब्रह्मा जी आपके पुत्र हैं, आपके स्टूडेंट हैं, आपके आपके द्वारा पढ़े लिखे गए हैं, आप ही उनको क्वालिफाई किए हैं, और वो भी आपको जानने के लिए प्रयास किए तो भी नहीं जान पाए, यहाँ तक तो अंशुमान जी पता नहीं उनको पूरे ज्ञान था। बोलते हैं कि न बुद्ध्यते समाधि युक्ति, बोलते ब्रह्मा जी भी आज तक नहीं जान पाए, आज तक ब्रह्मा जी प्रयास में हैं और नहीं जान पाए। तो प्रभुपाद जी ने उसके कमेंट्री के शुरुआत से गीता से श्लोक ले लिए, इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मन, बोले हम जितने हैं सांसारिक प्राणी हमारा जो उत्पत्ति हुआ है उसका मूल कारण क्या है, इच्छा और द्वेष, इसी में समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत ऐसे मोहित हो करके हम लोग फंसे हैं, तो हम क्या बेचारा जान सकते हैं, हमारा दशा तो बड़ा दुर्दशा है। शुरुआत में हमारा दशा के बारे में थोड़ा इशारा कर दिया, ये हम लोग का स्थिति है। और भगवान की स्थिति के बारे में एक बात बता दे, बोले ये भगवान को तो नहीं जाना सकता, भगवान को अगर कोई किसी प्रकार में भी जाना जाने का कोई उपाय है तो प्रसाद लेसानुगृहित वही केवल भगवान की कृपा, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयम्, अगर भगवान के श्री चरण की कृपा हो जाए वही स्वयं आकर बता दें समझा दें तब कोई समझ पावे, नहीं तो कोई उपाय नहीं। श्री चैतन्य लीला में हम देखते हैं एक ऐसे धुरंधर विद्वत पुरुष थे जिनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य, जगन्नाथपुरी के हेड प्रीस्ट थे वो, उनको महाराज प्रताप रुद्र ने अपॉइंटमेंट किए थे, पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिस में कंपटीशन हुआ था, अंतर्जातीय कंपटीशन में उन्होंने टॉप आए थे, तब तो सिलेक्ट हुए थे, इतने भारी विद्वान थे, इवन प्रकाश नंदा आदि आदि सब बड़े बड़े सभी जानते, फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम साउथ टू ईस्ट वेस्ट सारे भारतवर्ष से सभी जानते हैं सार्वभौम कितने विद्वान है, क्योंकि सबको प्रास्त करके उन्होंने क्वालिफाई किए थे, सभी उनको जानते। और महाप्रभु ने पूरी गए टारगेट किए सार्वभौम, सबसे पहले निशाना उनको बनाए, तो उनको टारगेट किए और उन्हीं को चेंज करने का तरीका, महाप्रभु इतने दीन नम्र हो गए, अपने आप को इतने छोटा माने के स्टूडेंट बन गए, उनके स्टूडेंट बन गए। एक तो उनको देखा है कि रूप ऐसा था कि बुढ़ा फंस गया, सार्वभौम देखा बोले इतना अच्छा लड़का है, मेरा ऐसा स्टूडेंट होता। अब पता चल लगाया उनका आईडी, जब पता किया अपने गांव वाले निकला, अपने गांव वाले है इतने सुंदर मिश्र ब्राह्मण है और वो भी संन्यास ले, तो मन में स्वाभाविक स्नेह ममता हेल्प करने का विचार आया और महाप्रभु तो महा आकर सके फंसा देती बुढ़ा को, तो वो आया उनके पास बुला कर ले करके बोला देखो आप संन्यास ले लिए लेकिन मेरा डाउट है, इतने यंग स्टेज में इसी उम्र में ले लिया ठीक है। तो महाप्रभु बोलते हैं कि सार्वभौम जी आपको पता है पुरी में किस लिए आया, बोले ना तीर्थ करने के लिए नहीं, ठाकुर जी के दर्शन नहीं, कुछ नहीं, मेरे केवल एक ही प्रोजेक्ट था, बोले क्या, केवल आपके ही पास आया था मैंने, बोले सार्वभौम जी मेरे पुरी आने का एकमात्र उद्देश्य आपके शरण में आना था, नहीं रियली, मुझे पता लग गया था, मुझे पता लग गया था अगर मुझे इसी विरक्त धर्म में निष्ठा लाना है तो आपके ही द्वारा ही हो सकता, तो मैं पता लगा लगा करके आपके पास आया हूँ। और भगवत कृपा से, मैं तो आपको फोटो भी नहीं देखा था, जानता नहीं था, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से आप ही मिल गए पहले दिन। ये बात को सुनकर सार्वभौम तो बोला, कितने अच्छा है रे, कितने हो। उसका तो अंतर पिघलने लगा, ऐसे उनको बड़ाई की, मैं तो केवल आपके शरण में हूँ, आप कृपा करके मेरा, मुझे आपके छोटे शिष्य पुत्र और आपके निर्भर, आपके मान करके जो कुछ डांटिए पीटिए सिखाए जो कुछ, मैं आपके शरण में हूँ। ऐसे 5-7 वाक्य बोल दिए, उनका तो कच्चे बार सारा हूँ। उनको तुरंत खूब ले करके साथ में दर्शन भ्रमण करा कर माला वाला पहना कर अपना घर में ले लिया, बुला करके अपने घर में बुला करके बोला कि अब ऐसा करो मैं आपको सिखाऊं ना, सिखाओ, मुझे पूछने क्या है, आप जो चाहे सो करो, मैं तो आपके शरण में हूँ, कैसे मुझे बचाना मुझे संभालना अभी आप काम सार्वभौम जी, मुझे दूर मत कीजिए, मैं आपके शरण में शरणागत हूँ। ओहो, ऐसे वाणी सुनकर तो सार्वभौम कृतकृत्य हो गया। अब उनको बुला करके एडमिशन फीस जमा करना, कोई फॉर्म फिलअप करना, एडमिशन को टाइम देखना, कुछ नहीं, स्वयं टीचर खुद स्टूडेंट को बुला लिया अपने घर में, टीचर का घर में बुला करके ले करके, कोई क्लासरूम फासरूम कुछ नहीं, सीधा घर में आंगन में एक बार खुद साफ करके झाड़ू, खुद झाड़ू लगाया, आसन डाला स्टूडेंट के लिए, आसन टीचर डाला, डाल कर बैठा करके उनके सामने बैठ गया, चश्मा वश्मा लगा करके पुथली को बैठो, बता दो आप बैठे पढ़ा, टीचर तो थे ही सार्वभौमवादी प्रोफेशनल टीचर, वेदांत पढ़ा रहे थे, दांत था उनका तो पढ़ा रहे थे, तो आप सिंगल स्टूडेंट, उनका कई स्टूडेंट एक साथ पढ़ाते, आज एक ही छात्र को पढ़ाने लगे, और जब पढ़ाना शुरू किए एक शुरू पढ़ पढ़ करके इसी इस करके देख रहे थे, क्यों देख रहे थे, क्योंकि महाप्रभु के रूप तो अत्यंत आकर्षक था ही, रूप के ऊपर में जब स्टूडेंट का रोल भगवान ने किए, ऐसा स्टूडेंट बने तो अवधि, जब भगवान स्वयं छात्र बने तो फिर कैसे छात्र होगा, एग्जाम्पल, ऐसे विनित, ऐसे ओबीडियंट स्टूडेंट, ऐसे विनित भाव से बैठे थे, ऐसे एकाग्र चित्त था, कोई झपकी नहीं ले रहे थे, कोई जमाई लेना इधर उधर उधर, हम 15 मिनट में 15 बार एक्शन चेंज करते हैं पोजीशन, कुछ ऐसे नहीं, कुछ ऐसे ही कागर से स्टूडेंट्स आप बैठ रहे थे, उनके पोज को, उनके भाव को, उनके बैठने का मुद्रा, उन्हें विनित भाव को देख करके सार्वभौम गदगद होते थे, आपने मन में सोच रहे थे मेरे टीचर पना को धन्य है, मैं इतने दिन तक गुरुगिरी किया, पढ़ाया, टीचरशिप किया, ऐसा स्टूडेंट, ओह अभी सफल हुआ मेरा टीचरशिप करना, ऐसे स्टूडेंट किसको मिल जाए, आपने आपको सराहना करने लगे थे, और उनका जिस प्रकार एकाग्र चित्त से श्रवण का भंगी को देख रहे थे, सोचो तो पी ही रहा है, सुन नहीं रहा है, सब एक एक प्रांजल रूप से अक्षर तक सब ग्रास कर जा रहा है, इतने आपने आप स्वयं खुश हो रहे थे, सो नाइस, और इसीलिए बार बार देखते थे उनको, इतने उत्तम कोटि के छात्र। अब पढ़ाने लगे उन मन ऐसे लग गया टीचर का, ये बिल्कुल आज का स्टूडेंट है, कि जान पहचान पुराना भी नहीं है, इतने मन लगाया कि एक हफ्ता तक आपने ड्यूटी छुट्टी ले लिए, आपने सेवा से 1 वीक लीव लिए, जगन्नाथ जी के मंदिर कहीं से जाए, सुबह शाम तो वहीं बैठे, सेवा से अवकाश लेकर के अब उनको पढ़ाने लगे, कोई पहले योजना नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन अब इतने सीरियसली पढ़ाने लगे, वीकेंड तक पढ़ाने के बाद में अब स्टूडेंट का मन में तो कोई प्रश्न आया नहीं, वो पूछा नहीं, टीचर ने प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछते समय उनका मन में ये भाव आया होगा, इतने सुंदर स्टूडेंट है, पूछता नहीं तो सब समझ रहा होगा, समझ जाता ही लगता है, और मैं थोड़ा मेरे कंफर्म कर लूँ पूछ करके सब समझ में आ रहा है तो और भी। तो इसी माने में तो सार्वभौम जी खुद पूछे, बोले श्री कृष्ण चैतन्य जी, उनका नाम तो ही जानता था उन्हें, कृष्ण चैतन्य जी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो खुश होकर के, मैं आशा करता था कि बोलेंगे आपका वाणी इतने अमृतमय, इसे बढ़िया सब समझ रहा हूँ, यही उत्तर आशा करते हुए पूछे कि जरूर ऐसा कहेगा, इतना अच्छा सुन, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ व्याख्या कर रहा हूँ सब समझ में आ रहा ना ठीक ठाक, बोल करके आशा तो ही कर, इसलिए बिल्कुल डांट कर बैठे, जरूर कहेगा। लेकिन ये प्रश्न पूछने के बाद में और छात्र शिरोमणि का उत्तर जब सुने, ओहो, छात्र शिरोमणि बड़े विनीत भाव से बोले, गुरुजी कुछ भी नहीं समझ में आया। बोले व्हाट, तू कैसा स्टूडेंट है यार, मेरे कैरियर में ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा मैंने, पूरा हफ्ते दम तक मैं परेशान हो गया पढ़ाता, मैं छोड़ के नहीं जाता, दूसरा काम छोड़ करके छुट्टी लेकर एक पढ़ाया, तू ऐसे बैठ कर झपकी भी नहीं लाता, जमा भी नहीं लाता, इतने सीरियसली अब सुन भी रहा है और पूछ भी नहीं रहा, जब समझ में नहीं रहा पूछता क्यों नहीं, बोला क्या तेरे भाव मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब शुरू से पहला दिन से, मैंने पहला दिन सेकंड डे थर्ड डे कुछ नहीं समझ आया। ओहो, सारों का मन इतने खट्टा हो गया, बोले क्या मान गए कैसा है यार, बोले तो समझ में नहीं आता पूछता क्यों नहीं है, ना क्या पूछूं, जो आप मूल श्लोक पढ़ रहे हैं वो तो सब समझ में आ रहा है, ये सब ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन आप जो परपट दे रहे हैं ना, और परपट समझ में नहीं आ रहा, बोले क्या टेक्स्ट समझ आ रहे परपट नहीं आ रहे, तो और कंफ्यूज किया होगा, ऐसे कंफ्यूज में डाल दिए, कंफ्यूजन में डाल करके थोड़ा सा फिर आर्गुमेंट शुरू किए, किसी से मन आया तो पूछता क्यों नहीं, क्या पूछूं, जब मूल में ये बात लिखा है आप परपट ऐसे क्यों दे रहे हैं, धीरे धीरे पहले तो बता रहे थे मैं पढ़ा लिख के नहीं हूँ, ऐसे हूँ ऐसे हूँ, इतने हम्बुल करके डाले और धीरे धीरे प्रकाशित करने लगे, स्लोली स्लोली स्लोली, एक एक दुख का व्याकरण, बोला तो संस्कृत जानता है ना, थोड़ा वो सीखा हूँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट था, हाँ स्कूल में ही था, तो धीरे धीरे करके करते 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 आगे तक ऐसे युक्ति पर स्टेज आ गया वेदांत के ऊपर, अब दांत निकलने लगा, जितने बितंडा जुक्ति उठाने लगा, ये ओ उठते ही तुरंत थप, वो जुक्ति निकालते ही भगवान है, एक ऐसे मार दे बुढ़ा कब, वहीं से दांत खट्टा हो जाता था, वो बोलती ना ऐसे निरस्त के कि मुंह से वचन निकलना बंद हो गया, खन्नी मार गया, क्या बोलेगा, और कोई बोला नहीं जा सकता, आपने आपको अति आश्चर्य होकर बोला लड़का कौन है, ये तो मुझे निरुत्तर कर दिया आज, अच्छा हुआ कि दूसरे कोई स्टूडेंट है ही नहीं आज। इतने आपने आपको अपमानित, इतने अक्वार्ड फीलिंग करने लगा, बोला मैं क्या हो गया मेरा, मैं वही सार्वभौम भट्टाचार्य हूं, ये एक छोटा सा लड़का है, अभी अभी वीकेंड मैंने खुद उसको लाया बैठा पड़ा, ये तो मेरा हाल खराब कर दिया यार, बहुत आपने आपको फील कर रहा था, तो महाप्रभु तू अंतर्जाम है, ये सार्वभौम जी ऐसा मत सोचिए, गलती सबका होता है, थोड़ा बहुत सब मानोपान हो लगता है, इसमें क्या ऐसा कुछ सोचने के बात में, डोंट वरी समझाने लगूंगा, थोड़ा उनके बात सुन रहा है, बोला सबका भी होता है ना, होता है, आपको कौन सा बढ़ गया, ऐसे होना कोई विचित्र बात नहीं है, इस बात में कभी कभी ऐसे हो जाता है, कभी कभी चिल्ला भी गुरु को मात मार देता है, तो ऐसे कोई बात नहीं, तो बोलते बोलते भागवत का आत्माराम श्लोक बोल दिए, बोले ये तो भगवान के गुण है ऐसा है, बड़े बड़े आत्माराम पुरुष दिग्गज जो जो बिल्कुल त्यागी महापुरुष है, आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे, जिनका गांठ बिल्कुल खोल चुका है, ऐसे रुक्रम महापुरुष लोग भी फंस जाते हैं, आकर भक्ति करने लगते हैं। बोले क्यों? बोले हरि के गुण ही ऐसा है, हरि के गुण ही ऐसा है उनको फंसा डालता है, तो इसलिए आप इस चक्कर में आ गया। क्या वो समझ में आ रहा था? हरि तो सामने ही फंसाता है उसको, वही फंसा रहे, समझ नहीं आ रहा था। बोला आप ये भागवत श्लोक जानते हैं? बोले हाँ सुना था कैसे। बोले वो अर्थ बता सक, बोले मैं छोटा सा स्टूडेंट, मैं क्या आपके सामने अर्थ बताऊँ, आप ही बताइए। तो सारा उन्होंने श्लोक अर्थ करने लगे, उन्हीं से अर्थ कराए, वो तो पूरे कसर लगा करके नव अर्थ किया, नव प्रकार अर्थ किया, और उनसे बोले उससे भी और भी अर्थ नहीं है, और नहीं हो सकता, रिपीटेशन होगा और क्या होगा। जिस प्रकार से जो अर्थ निकल में सब कर दिया। तो बोले नहीं आप चाहते हैं तो मैं, मतलब बोलो देखिए तू क्या बोलेगा। वो सोचा तो मुझे बोला उसी को रिपीट करे, वो क्या बोलेगा। लेकिन महाप्रभु ने उन्हीं से आज्ञा ले करके उन्हीं के सामने फिर अर्थ करना शुरू किए। उनका नौ प्रकार का अर्थ को टच किए बिना 17 अर्थ और निकाल दिए, एक के बाद दूसरा अर्थ करते चलते सार्वभौम का ऐसे अंक उठ रहा था, इस आश्चर्य की सीमा नहीं रहा। 17th में आया और संभला नहीं, क्या दुम दड़ाम कर गिर पड़ा एक बार मूर्छित होकर। हुआ रही हो तो हो ही नहीं सकता, पहले तो स्टूडेंट का मानना था, स्टूडेंट तो मनुष्य भी नहीं हो सकता। आप वो कौन आप तो बताओ, ये तो गड़बड़ी है, तू आईडी कुछ छिपा रहा तो बताओ प्लीज। मूर्छित हो, कंपमान हो, बिल्कुल अति विस्मित आश्चर्य होकर देखने लगा। महाप्रभु बोले बुढ़ा हाइड्रोज हो गया, अब ज्यादा नहीं करना चाहिए, इतने बहुत है। इतने में भगवान ने अपने रूप दर्शन करा दिए उसको। तो जब भगवान के इसी प्रकार उनके ऊपर कृपा नहीं हुआ था, इसी नहीं मन में सोच रहा था कि भगवान को पढ़ाऊंगा, ट्यूशन करा कर उनको ठीक ठाक कर दूंगा, यदि वो एतराज ना करे तो उनको अपग्रेड कर दूंगा। गोपीनाथ से पूछा था, बोला ये संन्यास किस में ले, भारत, भारत किस लिए, मेरा तो पहचान है, फोन करूंगा अपग्रेड करा दूंगा, गिरिपुरी में कर दूंगा। गोपीनाथ बोला वो साला भी नहीं लगे, बोला तू पागल है क्या, ये ईश्वर है, उनको कौन सा संन्यास से पढ़ी है, ये सबसे क्या मतलब है। सार्वभौम ने देखने लगा, आप बोलता ईश्वर है, और सार्वभौम का स्टूडेंट लोग भी आए थे, वो खड़े वो डिबेट करने लगे, बोले गोपीनाथ जी आप बोल दिए ईश्वर, भारती प्रभु ऐसे जिस किसी को ईश्वर बोल देंगे आपने। बोले नहीं जिस किसी को नहीं बोलता हूँ, ईश्वर को ईश्वर बोलता हूँ। बोले कैसे ईश्वर, क्या प्रमाण है? बोले ईश्वर का प्रमाण क्या होता है? बोले ईश्वर का प्रमाण अनुमान होता है। बोले गधे कहीं के, अनुमान से ईश्वर को प्रमाण करेंगे? अनुमान से ईश्वर क्या प्रमाण कैसे कर सकते हैं? बोले अच्छा अनुमान से ईश्वर प्रमाण, तो गुरुजी यही से क्या, गुरुजी खड़े थे इधर। बोले कैसे ईश्वर को जान सकते हैं? बोले ईश्वर को जानने के लिए श्लोक बोले अथापि ते देव पदाम्बुजे, ईश्वर की कृपा से ईश्वर को जाना जा सकता है। अच्छा ईश्वर की कृपा से ईश्वर को जाना सकता, नहीं तो कोई। बोले आप ईश्वर को जान लिए, आपके ऊपर कृपा है, हमारे ऊपर कृपा नहीं, मैं हेड पुजारी हूँ, जगन्नाथ जी के मेन पृष्ठ हूँ, मेरे ऊपर कृपा नहीं है, तू घर से आया, बोले तेरे ऊपर कृपा, तू समझ गया हैं, क्या प्रूव है तेरे ऊपर कृपा है? गोपीनाथ हंसने लगे, बोले अरे साला, उनके साला ही लगेंगे, गाली नहीं दे रहे थे। बोले मैं ईश्वर को समझ ले, यही तो प्रमाण है कृपा है, उनके कृपा के बिना समझा कैसे? वस्तु के स्वरूप वस्तु ज्ञान से होता है। बोला मैं सुबह से लाकर हूँ, बोले यही तो मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा किसने खोटे बुद्धि है, सुबह 6 बजे से लाकर 3 बजे तक घर में रखा हूँ, घर में रखा था तूने, उसके सारे लक्षण देखा, देखा ना था ना आपने, अति आश्चर्य होकर के उन्हें सात्विक विकार चिन्ह को सब देखा था ना, ना देखा था ना, फिर भी समझ में नहीं आया, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है करके। आज के जो क्रिया मुद्रा जो देखा तो नहीं समझ में आया कि साधारण मनुष्य नहीं है। बोले अरे खबरदार, मेरे से युक्ति कर रहा है, शास्त्रार्थ मेरे से कर रहा है। गोपीनाथ मैं जानता हूँ तेरे से कोई शास्त्रार्थ कर नहीं सकता, तू दिग्विजयी पंडित हो, मैं भी तेरे शास्त्रार्थ नहीं कर रहा, लेकिन क्या शास्त्रार्थ करूँ, शास्त्र में जो बात लिखा है मैं जानता हूँ, यही बात कह रहा हूँ। क्या बात लिखा है? ना शास्त्र में ही बात लिखा है, कि शास्त्र ज्ञान के द्वारा ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। गुरु खट्टा हो गया स्टूडेंट के सामने, उसको बोलता है और तू कैसे जानेगा शास्त्र में यही बात लिखा है ना? क्या शास्त्र में लिखा है? शास्त्र में लिखा है कि कलयुग में ईश्वर नहीं है, वो त्रिजुगी है। बोला तभी तो मैं बता रहा हूँ, भागवत और भारत, महाभारत और भागवत दो मुख्य शास्त्र है, इन दोनों में प्रांजल रूप में इस बात में लिखा है। तो उसमें पढ़ करके कितने बार नहीं पढ़ा, उसको नहीं जानता है? भागवत में लिखा है इस बात, महाभारत में भी लिखा है इस बात, कलयुग के इसी ईश्वर के बारे में लिखा गया है, फोरकास्ट किया गया है, तो पढ़ करके नहीं समझ पा रहा। आप युक्ति का बोला तू क्या मेरे युक्ति करेगा? चलो ना, मैं तेरी युक्ति भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो कभी वही चाहता हूँ कि कब आपके ऊपर इनकी कृपा हो जाए, वही खुद अगर आपके ऊपर कृपा करें तब आपको ऐसे ही समझ जाएंगे, बाकी क्या समझेंगे तुम्हें। गोपनाथ बोल के गया था, आज एक हफ्ता में हो गया, एक हफ्ता के अंदर सार्वभौम को ऐसे अद्भुत परिवर्तन कर डाले। तो ये प्रकट प्रमाण है कि सार्वभौम जैसे प्रकांड विद्वान भी ईश्वर को उठा करके लिया, अपने घर में रखा, पूरा दिन सुबह से शाम तक रखा, उनको खिलाया पिलाया और उनको सौहार्द्य किया, उनके आशीर्वाद लिया और एक हफ्ता तक अपने घर में बैठा करके सामने, बिल्कुल सामने देख करके श्रद्धा से उनके पढ़ाया, तब भी नहीं जान पाया। और शास्त्र ज्ञान तो था ही, वो कितने ज्ञानी था, प्लस डेली पढ़ाता था स्टूडेंट को, तब भी नहीं समझ आ रहा था। लेकिन जब कृपा हुआ तो ऐसे परिवर्तन हुआ, ऐसे परिवर्तन हुआ कि पूरे स्टेट में लोग आश्चर्य हो गए कि सार्वभौम पंडित का ये परिवर्तन, उनका हेडलाइट चेंज हो गया। हेडलाइट ऐसा था, हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल हो गया। हाँ, जो देखे बोले हो क्या गया गोसाई, आपका सोने चांदी का माला पहन रहे थे, वो उतार करके लकड़ी का माला पहने, ये परिवर्तन करना एक हफ्ता में, ये है ईश्वर की कृपा। तो इसलिए भगवान को जानने के लिए कोई साधन, कोई ज्ञान, कोई तप, कोई उपाय नहीं। रूप गोस्वामी का एक भजन है, ये शब्द से याद आता है मेरा, शायद इसमें होगा, कृष्ण देव भवंतम बंदे, कृष्ण देव भवंतम बंदे, कृष्ण देव भवंतम बंदे, मन मानस मधुकर मर्पय निज पद, मम मानस मधुकर मर्पय निज पद, पंकज मकरंदे, कृष्ण देव भवंतं वंदे। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचिं, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचि, इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत, इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत, तदपि कृपाद्भुतवीचि, तदपि कृपाद्भुतवीचि, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, भवन्तं वन्दे। भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव, भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव, न त्वयि मम तिलमात्री, न त्वयि मम तिलमात्री, परमेश्वरता तदपि तवाधिक, परमेश्वरता तदपि तवाधिक, दुर्घट घटन विधात्री, दुर्घट घटन विधात्री कृष्ण देव भवंतं वंदे कृष्ण देव भवंतं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे कृष्ण आप मेरे देव है, मेरे देव आप ही बनी है। देव भवंतं वंदे मन मानस मधुकर मेरे मन रूपी भ्रमर मम मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरंदे। हे कृष्ण मेरे मन रूपी भ्रमर को कृपा करके अलाव कीजिए, आपके श्री चरण कमल के चरण कमल से जो सुधा निर्गत हो रहा है उसको पीने के लिए बैठ कर पीने के लिए उसको अलाव कर लीजिए प्लीज। आप अर्पण करो। भगवान बोले अरे तू सीधा आकर के मेरे चरण सरज में सुधा को पूरा वहीं बैठकर पीना चाहते, दूसरा कुछ नहीं? ना नहीं मैं इसको पीना चाहता। बोले पता है इसको पाने के लिए? कहा पता है। बोले क्या? तो बताते हैं यद्यपि समाधि से विधि अपि पश्यति। विधि ब्रह्मा को कहते हैं, ब्रह्मा जी के नाम है विधि। बोले यद्यपि यदि मैं जानता हूँ समाधि सु, यहाँ भी समाधि शब्द आया, यद्यपि ब्रह्मा जी आपने बड़ी आयु से आपने बड़ी सामर्था से चार मुख हिरण्यगर्भ वेदगर्भ है ये ब्रह्मा सृष्टिकर्ता आपने योग समाधि द्वारा न पश्यति देख नहीं पाते हैं। क्या नहीं देख पाते हैं? आपको देख नहीं पाते हैं, आपको नहीं देखे टोटाली, आपके चरण को देखे। बोले नहीं चरण को भी नहीं देख पाए, चरण के नहीं पाए तलवार चरण तो लोग बोले नहीं उसको भी नहीं देख पाए। बोले नाख नाख को तो देख लेंगे कम से कम। बोले नाख को भी नहीं, नाख को क्या तो नखाग्र मरीचि नाख से जो चमक निकल रहा है वो उसको भी नहीं देख पाया। यद्यपि समाधि सु विधिर अपि अपश्यति न तब नखाग्र मरीचिम आपके नाख के अग्रभाग से जो लाइट निकल रहा है जो चमक निकल रहा है उसको भी देख नहीं पाए ब्रह्मा जी अब तक अपने समाधि योग से समाधि से नहीं देख पाए। इदमी छामी निशम्य तवाच्युत लेकिन मैं इच्छा करता हूं। बोले किस साथ पर भाई? ब्रह्मा जी नहीं कर पाए तू उन्हीं की परंपरा के हो। ब्रह्मा जी अपने समाधि योग से नहीं देख पाए अभी तक, चरण क्या नखाग्र परिचित देख नहीं पाए, तो इदमी छामी तुम इच्छा करते हो ना मैं इच्छा करता हूं, मैं तो पीऊंगा रस सीधा देखूंगा क्या? बोले हाँ कैसे क्यों? मैं इसलिए इच्छा करता हूं। किस बल पर इच्छा करता है? सुन के बल पर, मैं सुना हूं आई नो। तुम क्या जानते? इदम इच्छामि निसम्य तवाचित, निसम्य मतलब भली प्रकार से श्रवण किया हूं, अच्छी प्रकार से सुना हूं मैंने। क्या सुना? न तदपि कृपाद्वित बीचिंग आपके अद्भुत कृपा के तरंग को मैंने बारंबार सुना हूं। आपके कृपा का जो अद्भुत शक्ति है उसको मैंने बारंबार सुना हूं, इसलिए सुन करके मेरे मन में ठान चुका हूं मैं तो पीऊंगा देखूंगा क्या। निशम्य तवाच्युत तदपि कृपा अद्भुत बीचिम, बोले ठीक है पीऊंगा लेकिन भाई भक्ति के बिना भक्ति। बोले भक्ति 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 तो मेरे से कुछ नहीं है ठाकुर जी। भक्ति रुदंचति यद्यपि माधव, हे माधव हे लक्ष्मीपति हे कमलापति आपके प्रति मेरे हृदय में तिल मात्र भी भला भक्ति होता। भक्ति रुदंचति यद्यपि माधव, यदि भी मेरा हृदय से आप प्रति रंच भर भी भक्ति नहीं है, तिल मात्र भी भक्ति नहीं है, न तो ही मम तिल मात्री आपके प्रति मेरा तिल मात्र भी भक्ति भावना नहीं है। बोले तब भी ना तब भी फिर कैसे? इतने भी भक्ति नहीं फिर इतने बड़े साहस? बोले साहस है। बोले किस लिए? न परमेश्वरता तदपि तवाधिक दुर्घट घटन विधात्री। बोले मैं तो नालायक हूं, भक्ति भक्ति कुछ भी नहीं है ये मुझे पता है, मेरे बारे में मुझे पता है, लेकिन ये भी पता है ना क्या ना आपके परमेश्वरता आपके महानता आपके शक्तिमत्ता भगवत्ता आपके परम ईश्वरता मुझे ऐसे पता है, क्या पता है ना, दुर्घटक विघटन कर सकता है, अति महा आश्चर्य कभी नहीं होने वाला जो चीज इसको ऐसे ही बना सकता है, अति आश्चर्य को भी कर सकता है, दुर्घट घटन विधात्री ये आपके परमेश्वरता है। तो मैं इस नालायक को सलायक करना आपके लिए तो कुछ भी नहीं है, तो आप कर सकते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। इस जो सुनकर विश्वास किया इसी के बल पर पीना चाहता, तो इसलिए होपलेस नहीं होना चाहिए हम लोग को। रूप गोस्वामी ने हमको सबको आशा दिए हैं इस भजन से, कोई निराशा नहीं होना चाहिए, पूर्ण आशा रखना चाहिए। यद्यपि हमारा स्थिति बहुत नाजुक है, कोई भक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन केवल भगवत कृपा के ऊपर पूर्ण भरोसा करो, भगवत शक्ति ऊपर उनके परमेश्वरता पर विश्वास करो। उनके परमेश्वरता ही ऐसा है, अति अघटन को घटन कर सकता है, दुर्घटन घटन कर सकता है। तो आपको ही उनके चरण सरोज में आपके मन भ्रमर को सुधा पिला सकता है, ऐसा ये आशा रखते हैं। तो ये आशा आता है निसम्य केवल ठीक से श्रवण करने से, श्रवण करने से अभी ये अड़िग विश्वास, ये अड़िग दृढ़ता, ये ठान आ जाता है, नो प्रॉब्लम। तो इतने को हमारे क्यों नहीं करेंगे, वो करेंगे, मेरे से वो कुछ है ही नहीं, मैं उनके सहारे में हूँ तो किसे नहीं करेंगे, ऐसे दृढ़ता आ जाए। तो आज अंशुमान ने भगवान कपिल देव को प्रार्थना करते हुए शुरुआत से ये सूचना दे दिए कि मैं इस स्थिति हूँ, आपको तो कृपा करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको भगवान करके मान लिया, जान लिया, अब आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपके स्वभाव के अनुरूप आप मुझे कृपा करेंगे, मैं तो घोड़ा लेकर ही जाऊँगा। और उन जो अपराधी जिनको दशा हो उनका भी उद्धार होगा, ये आपकी बोल दीजिए मुझे। हाँ, उनको बोलना पड़ा, उनका मुक्ति के उपाय भी वो बोल दिए, बोले गंगा स्पर्श से होगा, अब टाइम लगेगा गंगा जी आने में, लेकिन बोल तो दिए ना, उपाय बता दिए। तो जो काम कितने बल बुत्ते पर, कितने शक्ति सामर्थ्य पर नहीं हो सकता है, वो केवल नम्रता और प्रार्थना से ऐसे असंभव संभव हो सकता है। इसी के कृपा को आपके ऊपर लेने के लिए यही प्रोसेस है, बस ऐसे बात करो, बेचारे फंस जाएंगे, करना पड़ेगा। भगवान तो फंसने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कोई ऐसे कैंडिडेट आए तो उनके लिए हमेशा रेडी रहते हैं। हरे कृष्ण, समवेत भक्त वृंद की। एनी क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ
किसी में इतना शिष्टाचार नहीं है, तो सरल में ऐसे पुत्रों को असमय लिए।
प्रभु जी, आपके 60,000 के लिए डिस्टेंस के दिल्ली में कितने लोग होंगे? दिल्ली में पॉपुलेशन कितना होगा? 1.5 करोड़ है ना? किसी का एक का भी सुविचार है? और वो 60,000 क्या कहे, तो बहुत कम है। 60,000 का प्रॉपर बिहेवियर नहीं हुआ, ये एक 1.5 करोड़ का बिहेवियर नहीं है, सब पॉल्यूटेड कर देते हैं, है ना? नहीं तो उसमें आश्चर्य क्या? जो अपने अहंकार में ग्रसित होगा, ध्यात्म बुद्धि से रहेगा, उनका ही दशा है ना? और वो एक ही लाइन पकड़ेंगे सब। आप बोलते चारों दिशा में नहीं, वो चारों दिशा में जाकर भी यही दिशा में आए, जहाँ पे घोड़ा था वो जो एक देख लिया सबको बुलाएगा ना, अरे इधर ही है, अब इधर उधर क्यों जाए, है ना? आया समझ में? आप कह रहे क्या लक्ष्य दिया गया? हाँ, भगवत कृपा से भगवान जान सकते। भगवत कृपा कैसे प्राप्त होगा? भक्त कृपा अनुगामिनी, है ना? यहाँ ये कहा गया कि भगवत कृपा से भगवान को जानेंगे, भगवत के कृपा को कैसे प्राप्त करोगे, उसका भी तो कुछ उपाय है ना। ओके हरे कृष्ण।